जो सुख को चाहे सदा। जपो जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा। क्या कर शरण राम की ले, शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, शरण
राम की ले।
सारे बोलो शरण राम की ले, शरण
राम की
ले, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा। नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे, कौ नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे, दुर्लभ मानुख दे, शरण राम सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम
की ले,
शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, शरण राम की ले, ओ ले ले शरण राम की, जो तेरी शरण आई हर जियो, तिन तू राखण जोग, तुद जे वड मैं अवर न सोजे, ना को हुआ ना होग, हर जियो सदा तेरी शरणाई, ज्यों भावे त्यों राखो मेरे स्वामी, ज्यों भावे त्यों राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई जो तेरी शरणाई हर जियो तिन की करे प्रतपाल आप कृपा कर राखे हर जिया न सके जमकाल शरण राम की ले
राम की ले
सभी कहो अपने मन को शरण राम की ले सुख को चाहे सदा वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु सुख को चाहे सदा जो सुख
चाहे सदा
ओ शरण राम की ले
शरण राम की ले
सारे शरण राम की ले सुख को चाहे सदा जो सुख को चाहे सदा जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले 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 शरण राम की ले गुरु प्यारे जितने भी संगत बैठी हो एक बार बड़े प्यार के साथ सारी संगत बोलो सतनाम श्री
वाहेगुरु।
मुझे कोई हाथ खड़ा करके बताओ संगत में से कि कौन है इस संसार में जो ये नहीं चाहता कि मुझे सुख मिले। कौन है? हर कोई चाहता है, हर कोई मुझे अधिक से अधिक सुख मिले, अधिक से अधिक सहूलत मिले। ध्यान देना, हर कोई चाहता है, हर कोई। मगर आज जितने भी संगत में आए हो यहां से ये ज्ञान लेके जाना, अगर चाहते हो सुख तुम्हें मिले, सुख तेरी सियानप में नहीं है। आखो सतनाम
वाहेगुरु।
सुख तेरी चतुराई में नहीं है। कहां है सुख? मेरे धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह बोल रहे हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर चाहता है तुम्हें सदा के लिए सुख मिले तो उस गुरु नानक की शरण में आ जा। हखो सतनाम, उस गुरु की शरण में आ जा। शरण में अगर सुख चाहता है, एक मैं बेनती करूं अपनी कथा जो गुरु आगे चलाए उसके पहले, कई मेरी इधर बहनें बैठी हैं, कई गुरुमुख प्यारे पीछे बैठे हैं जिन्होंने सिर ठके नहीं है। आखो सतनाम, कृपा करके गुरु की हजूरी में सिर ठके बैठो। हाजर नाजर गुरु नानक बैठा है प्यारे। तो खैर वहीं पे आना। अगर चाहते हो सुख मिले तो उस गुरु नानक की शरण में आ जा, शरण में। अब अंदर ना जो अध्यात्मक अवस्था वाला यहाँ पे बंदा बैठा हो ना, उसके अंदर ये विचार पैदा होती है, कहता अब तो मैंने सुन लिया गुरु की शरण में आने से सभी सुख मिलते हैं, मगर शरण में आना कहते किसे हैं? आखो सतनाम। कई लोगों को इस बात का ही नहीं पता शरण आना किसे कहते हैं। प्यारे हो, वो शरण आना दो तरह का होता है, दो तरह का। सदगुरु सेवा ले, उसके पहले अब सारी संगत गूंजवी आवाज में पढ़ना, कोई भी रसना खाली ना रहे, जो मेरे धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कह रहे, क्या जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, क्या कर ओ शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
राम की ले शरण, शरण राम की ले, शरण राम
की ले,
जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, ले ले शरण राम की ले। प्यारे हो, अगर चाहते हो सुख मिले, सुख गुरु नानक की शरण में आने में है। प्यारे हो, अब शरण में आना कहते किसे हैं? दो तरह का है प्यारे हो शरण में आना, दो तरह का। जितने बैठे हो, ये पहली तरह का शरण में आना कि इस संसार पे हर कोई बंदा ये कहता है कि हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हक सतनाम, ध्यान देना, हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। मैंने उसको ऐसे बोला था, क्यों नहीं मेरी बात मानी गई? आज झगड़ा इसी बात का है, हर घर में, हर समाज में, हर जगह पे, हर सोसाइटी में, कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती, इसी बात का। मेरी टांग ऊपर होनी चाहिए। हक सतनाम, चाहे जायज बात कहे चाहे नजायज, मेरी माननी दूसरे को पड़ेगी। हर कोई बंदा कहता है कि हर काम मेरी मर्जी से हो, ये पहली तरह का शरण में आना, अपनी मर्जी को छोड़ के जो गुरु बाबा नानक कर रहा है उसकी मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला दे। आखो सतनाम, उसकी मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला दे, फिर दुखों में रहता हुआ बंदा भी सुखी रहेगा। यहाँ पे कोई दुख नहीं आएगा यहाँ पे। अभी कई शायद ना समझे हो, ये उसकी मर्जी के साथ मर्जी मिलानी किसे कहते हैं? किसे? ये हिंदू धर्म के ना एक महापुरुष हैं, औरत हैं, कथा करते हैं और व्यंत संगत जुड़ती है, जुबान में रस है। तो दास का भी उनसे बहुत प्यार संगत के नाते, तो एक दिन ना उन्होंने मुझे वचन सुनाया, कहने लगे कि हमारे महापुरुष जिनको वो मानते थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी औरत, और जिनको वो मानते थे वो महापुरुष भी आगे औरत ही, कहते हमारे महापुरुष जिनको मैंने अपना मन बेचा हुआ था, एक बारी मुझे संदेशा मिला कि महापुरुषों की ना तबीयत बहुत ढीली है, सेहत ढीली है। कहती मैं जब पता लेने के लिए गई, कहती जब पता लेने के लिए गई, महापुरुष बिस्तर पे लेटे, ग्लूकोस भी चढ़ रहा, ग्लूकोस चढ़ रहा, और हाथ में जो उंगली पे लगाते हैं ब्लड प्रेशर साथ साथ चेक हो रहा, कभी ECG, कुछ समय पहले खून भी कितनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत के जो लैटरिंग बाथरूम सब कुछ बिस्तरे पे ही हो रहा है। आखो सतनाम, महापुरुषों की इतनी बुरी हालत। तो कहती मैंने जाके महापुरुषों से कहा, महापुरुषों इतना बड़ा दुख आपके ऊपर आया कि सब क्रिया कर्म जंगल पानी सब कुछ बिस्तरे पे ही हो रहा है, इतना बड़ा आप पे दुख, इतने कष्ट। तो कहती जब मैंने ये बात महापुरुषों को बोली तो महापुरुष हंस पड़े, बेटा कष्ट कैसा हक सतनाम। कहती मैंने कहा जी ये तो कष्ट ही है ना, ग्लूकोस भी आपको चढ़ रहा, कितनी सुइयां लगी आपको, बीपी भी साथ साथ चेक हो रहा है, ईसीजी भी हो रही, कई कुछ हो रहा है, और इतनी बुरी हालत की सारा लेटरिन बाथरूम जंगल पानी आप बिस्तर पे कर रहे हो, ये दुख नहीं तो और क्या है। तो आगे कहते महापुरुष कहने लगे खस के, बेटा दुख कैसा, ये तो निरंकार ने मुझे दोबारा से फिर बच्चा ही बना दिया है। आखो सतनाम, ध्यान देना, दोबारा से मुझे निरंकार ने फिर बच्चा ही बना दिया। कहती बच्चा ही होता है जो सब कुछ बिस्तरे पे करता है, मुझे निरंकार ने बीमार नहीं किया, असलियत में समय दे दिया है कि बिस्तर पे लेटी रहे और जपती रहे सतनाम श्री। अब है दुख वही, आम बंदा उस दुख में खाए खाए करता है खाए खाए, मगर जो गुरसिख है जिसकी आंख खुल गई संगत करते करते, वो उस निरंकार के हर दुख में से सुख ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी मर्जी के साथ मर्जी मिलाने की कोशिश करता है। आखो सतनाम। वैसे अरदास करना, सदगुरु कभी भी हमारे ऊपर पर्चा ना डालें, इम्तिहान ना लें। जो सहज सुभाए दुख आ रहे हैं उन दुखों में कहीं ना कहीं कोई सुख जरूर छुपा होता है, कभी खोज के देखना। अब भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, माता कुंती आ गई, भगवान कहते माता तेरे पे प्रसन्न कुछ मांग ले। तो माता कहती भगवान अगर प्रसन्न हुए को आप कृपा करो, मेरे पे बख्शिश करो, सारे संसार के दुख मेरी झोली में डाल दो। आखो सतनाम। भगवान कहते माता और कुछ मांग। कहती भगवान जी मुझे दुख ही चाहिए। भाई ये क्यों मांगती है? माता कुंती कहती मैं दुख तो मांगती हूँ क्योंकि जब तक दुख होता है तू भी याद रहता है। आखो सतनाम। जरा सा सुख आने की देर तू भूल जाता है। ऐसी अवस्था तो कोई विरला की पहुंचता है, मगर अरदास करना, जो सहज सुभाए सदगुरु दुख दे रहे हैं वहां पे कोई ना कोई सुख जरूर छुपा होता है, जरूर उस दुख में कोई ना कोई सुख है। वैसे अरदास करना कभी सदगुरु इम्तिहान ना डाले। एक बीबी ना दास बैठे थे महापुरुषों के पास, भाई साहब गुरकबाल सिंह जी के पास, तो एक बीबी आ गई, मेरा ख्याल उसकी 60-70 के करीब उम्र। तो आके भाई साहब को कहती जी मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप कोई कृपा करो। अब महापुरुषों के पास सब कोई जाते हैं क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, और जाते भी तो ही हैं जब कोई दुख आता है, जब सुख तो अपने घर ही है। सतनाम, सही बात है। कहती मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कोई कृपा करो। तो आगे भाई साहब क्या कहते, उसको मैं पास ही बैठा था, कहते बीबी क्या कहती है? कहती जी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कोई कृपा। कहते तू कहती है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं तो रोज अरदास करता हूँ मेरे घुटनों में दर्द हो। आखो सतनाम। कहती ये क्यों कहते हो आप, आपके घुटनों में क्यों दर्द हो? कहते एक बात सच बोलना। कहती बताओ, आप हुक्म करो। कहते एक बात सच बोलना, जब से तेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ घर का काम तू तो नहीं करती? कहती नहीं नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा है, जब से दर्द होनी शुरू हुई उसने काम करने वाली बाइयां रख दी एक दो। हक सतनाम। अच्छा भाई एक बात और बता, जब से तेरे घुटनों में दर्द होनी शुरू हुई कोई आया गया मेहमान उसको तू तो अटेंड नहीं करती? कहते बहुएं भी हैं घर में वो करती हैं, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, मैं सारा दिन बेड के ऊपर बैठी रहती हूँ। तो कहते फरमाई पहचान पहचान, निरंकार ने असलियत में तुझे घुटनों की दर्द नहीं दी, असलियत में तुझे ज्यादा समा दिया, क्या हाथ में माला पकड़ और जपती रह सतनाम श्री। है तो बेशक दुख, आम बंदा दुख में खाए खाए करता है, मगर जिसकी आंख खुल गई उसके दिए हुए दुख में भी सुख ढूंढता है, ढूंढता है। कई बार देख लो आपके साथ बीतती होगी, कई बारी बंदा कभी भी वाणी नहीं पढ़ता, जरा सा दुख आए महापुरुषों के पास जाता है, महापुरुष कहते इतनी वाणी रोज पढ़नी, बेशक आया दुख मगर जोड़ के किधर जा रहा है। आखो सतनाम। ये भाई वीर सिंह जी ने ना इस बात के अर्थ किए, केतियां दुख भूख सद मार। कहते कई बारी निरंकार अपने प्यारे को दुख और भुख दे के ही सद मार, सद किसी को आवाज देते हो ना, कहते कई बारी निरंकार अपने प्यारे को दुख और भुख दे के ही अपने पास बुलाता है। आख सतनाम। नहीं तो कई बारी सुखों में रहता बंदा भूल जाता है प्यारे। जितनी भी संगत बैठी को अरदास करो, जितने भी बैठे को हमें गुरु की शरण में आने की दात मिल जाए। ये शरण में आना है पहली तरह का, अगर चाहते हो सुख लेना अपनी मर्जी को छोड़ के गुरु की मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला दे, सुखी हो जाएगा। और एक बात मैं बोलता जाऊं, वही बंदा प्यारे हो गुरु की मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला सकता है जिसको ये ज्ञान मिल जाए कि मेरा प्रीतम मेरा गुरु नानक मेरा कभी भी बुरा नहीं करता। सतनाम। वो मेरा भला ही करता है। मैं तो कई बारी बड़ा हैरान होता हूँ, वो तेरा बुरा क्या करेगा जिसको तेरी इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र कि अभी तक जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ, जन्म लेने से पहले ही उसने तेरी खुराक तेरी माता के पास भेज दिया। खो सतनाम। वो तेरा बुरा क्या करेगा। और कभी ध्यान देना, मैं कहता हूं इतना वो लाड करता है अपने बच्चों के साथ जितना तेरी माँ बाप भी तेरे साथ नहीं करते, वो अपने सिख को अपने प्यारे को इतना लाड करता है, ध्यान देना। अब बच्चे को जो छोटा अभी जिसने नया नया जन्म लिया हो, कभी भी उसको दूध देना हो ना, जरा सा गर्म दूध दे दिया जाए तो उसकी जुबान जलने का खतरा, नन्ही जान है, ध्यान देना उसको कितनी फिक्र तेरी, कभी गहराई में जाके सोचना। अगर जरा सा ठंडा दूध दे दिया तो पेट खराब होने का खतरा वही हो सकती है। आखो सतनाम। मगर उस गुरु ने तेरी माता के पास जो खुराक भेजी, ना बहुत ही गर्म भेजी ना बहुत ठंडी। आखो सतनाम। कितना फिक्र करता है वो तेरा। फिर क्यों नहीं बनता अपने प्रीतम का, क्यों नहीं, क्यों इधर उधर भटकते हो, क्यों कभी किसी का दर कभी किसी का दर कभी किसी के पास कभी किसी के पास, क्यों नहीं अपने गुरु बाबे के बनते प्यारे हो जिसके घर में सब इश्क है। साचे साहेबा क्या नाही करता तेरे, सब जिस दे हैं सो सब इश्क है, सब इश्क। किसी के घर में बहुत कुछ तो हो सकता है मगर सब इश्क है केवल मेरे गुरु नानक के घर में। आखो सतनाम। अभी तक हमें लेने की जाची नहीं आई प्यारे हो। आज जितने भी बैठे हो सत्संगियों ध्यान देना, अगर चाहते हो सुख मिले, सुख है गुरु नानक की शरण में। शरण में आना किसे कहते हैं, ये पहली तरह का शरण में आना, अपनी मर्जी को छोड़ गुरु की मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला दे। आखो सतनाम। और दूसरी विचार अभी हुई कि वही बंदा गुरु की मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला सकता है जिसकी ये आंख खुल गई कि मेरा गुरु नानक मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं करता। हको सतनाम। भला ही भला करता है, भला। और असलियत खोज के देखा करो, खोज के। ये ना अमृतसर के दो बंदे, दोनों संगत में आने वाले, दोनों ही कुदरती एक का तबादला हो गया, दोनों बैंक में सर्विस करने वाले थे। एक का तबादला हुआ फिरोजपुर और एक का तबादला अमृतसर से हो गया लुधियाना। ध्यान देना, अब रिहायश जो थी वो थी अमृतसर, अमृतसर। तो कुदरती संगत में आने वाले महीने दो महीने बाद मेल हुआ एक के साथ, जिसका तबादला हुआ था फिरोजपुर। मैंने पूछा, भाई इतने देर हो गई संगत में, आपको देखा नहीं, क्या कारण? तो कहता है, भाई साहब मेरे लिए तो वक्त पड़ गया, इतना मेरे साथ तो बुरा हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है, मेरा तबादला अमृतसर से फिरोजपुर हो गया। अब रोजाना बसों में थके खा के पौने दो दो घंटे लगते हैं जाने में, फिर शाम को थके टूटे आओ शाम को, फिर पौने दो दो घंटे लगते आने में। तो कहता है, मेरे साथ तो इतना बुरा निरंकार ने किया कि मेरा तबादला फिरोजपुर करवा दिया। अब कितनी टेंशन रहती है मुझे, कभी जाने की कभी आने की, कितना समय मेरा व्यर्थ चले जाता है। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा कोई नहीं, गुरु कृपा करेगा। तो खैर बात बीत गई। तो जब चार पांच दिन बीते, कुदरती दूसरे का मेल हो गया जिसका तबादला हुआ था लुधियाना में। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा आपको आपके दर्शन क्यों नहीं होते संगत में? कहता है, जी मेरा तबादला लुधियाना हो गया अमृतसर से, अब रोजाना जाना पड़ता है, ढाई तीन घंटे लग जाते हैं, पहले जाते फिर आते समय भी इतना समय लगता है, नहीं समय मिलता संगत में आने का। तो मैंने अपने मन में सोचा, ये भी लगता है बड़ा ही परेशान है, आखो सतनाम इसका भी तबादला अमृतसर से इतनी दूर हो गया, ये भी बड़ा परेशान। तो मैंने कहा, भाई फिर क्या चाहता है, इतना दुखी है तू भी बोल रहा है अमृतसर से लुधियाना में तबादला हुआ, तेरा लगता है परेशानी है तुझे? कहता है, आपसे क्या झूठ बोलना, मुझे परेशानी नहीं, मुझे और कृपा गुरु की मिल गई। आखो सतनाम। मैंने कहा वो कैसे? कहता है, अमृतसर में रह के मैं केवल आधा घंटा पौना घंटा अपने गुरु नानक को देता था, नितनेम करता था। कहते अब मेरा गुरु नानक मेरे पे प्रसन्न हो गया, ढाई तीन घंटे लगते लुधियाना जाने में, तब भी सुखमनी से पढ़ते जाता हूँ, ढाई तीन घंटे लगते हैं वापस आने में, तो भी सुखमनी साहब जपजीत साहब पढ़ते पढ़ते आता हूँ, मेरे गुरु नानक ने तबादला लुधियाना नहीं करवाया, असलियत में मुझे नितनेम ज्यादा करने का समय दे दिया। हको सतनाम। देखो, एक उसको दुख मान रहा है, मगर दूसरे का भी तबादला हुआ, उसमें से सुख ढूंढ रहा है। आखो सतनाम। प्यारे हो जितने भी बैठे हो, अपनी मर्जी को छोड़ के उसकी मर्जी के साथ मर्जी मिला दे, जब मिलाएगा तो सुखी हो जाएगा, सुखी सुखी। साथ साथ आगे चलते हैं, सदगुरु चलाए। एक बार सारी संगत प्यार से बोलना, कोई भी रसना खाली ना रहे, सारे प्यार से कहना जी, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
जपो जो सुख का चाहे सदा, जो सुख का चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, शरण राम की ले। प्यारे हो, चाहते हो सुख, उसकी शरण में आ जाओ। शरण में आना दो तरह का, ये पहली तरह का शरण में आना, अपनी मर्जी को, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है हर काम मेरी मर्जी से हो। आखो सतनाम, फलाना बंदा मेरे कहे अनुसार क्यों नहीं चलता, उसने ऐसा क्यों नहीं करा। है जी, हर कोई चाहता है हर काम मेरी मर्जी से हो। जब तक अपनी मर्जी है तब तक दुख ही दुख। अपनी मर्जी को छोड़ के गुरु की मर्जी के साथ मर्जी मिला दे तो दुख में रहता बंदा भी सुखी हो जाएगा। आखो सतनाम, मर्जी के साथ मर्जी मिलानी पता किसे कहते, शायद अभी भी कई ना समझे हो। ये बाबा नंद सिंह जी महापुरुष हुए हैं। बाबा नंद सिंह जी जिन्होंने अपनी जिंदगी में बंदगी कमाई और गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा को घर घर में प्रगट किया। आखो सतनाम, घर घर में। बाबा नंद सिंह जी एक बारी ना जिक्र मिलता है, क्योंकि बाबा जी ने अपने ऊपर 12-13 बैन लगाए थे, पाबंदियां लगाई थी, क्योंकि जब तक नाम जपने वाला ऐसे पाबंदियां ना लगाए दुनिया नहीं छोड़ती। क्योंकि जब बंदगी बढ़े हर कोई कहता है हमारे घर भी चलो, हमारे ऊपर भी हाथ रखो, मेहर करो, नानक दुखिया सब संसार कहते हैं। तो महापुरुषों ने अपने जीवन में ना 12-13 बैन लगाए थे, पाबंदियां लगाई थी। वो क्या, अपने जीवन में बाबा नंद सिंह जी ने कभी भी माया को हाथ नहीं लगाया। आखो सतनाम, कि रुपया होता कैसा, कभी शुके नहीं देखा, पहली पाबंदी थी। दूसरी पाबंदी बाबा नंद सिंह जी ने लगाई थी, कभी भी अपने पास कभी भी अकेली औरत के साथ वचन नहीं किया। अगर किसी औरत ने वचन करना भी होता था, बाबा जी कहते थे या तो उसका पिता या पुत्र या पति साथ हो। आखो सतनाम, या भाई साथ हो। अकेली औरत के साथ सारी उम्र वचन नहीं किया, सारी उम्र नानक सर पक्की ईंट नहीं लगने दी। यहां तक कि जब भी बाबा जी कहीं बंदगी करने के लिए बैठते थे, जाने से पहले उस जगह को आग लगा के जला देते थे। आखो सतनाम, हमारी कोई निशानी ना रहे। और जब भी संगत में बैठना, सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब, उसके नीचे गुरु के कीर्तनीय, उसके बाद गुरु की संगत, और आप खड्डा खोद के उस खड्डे में बैठना कि अभी मैं तो सिख भी नहीं बना। आखो सतनाम, ऐसे महापुरुष बाबा नंद सिंह जी। और कभी भी बाबा नंद सिंह जी किसी इकट्ठ में भी नहीं गए और ना बोले, इकट्ठ में नहीं बोले जाके, ना किसी गुरुद्वारे का नींव पत्थर रखा। बस एक जिक्र मिलता है, एक कि संगत ने बहुत बेनतियां की कि बाबा जी आके हमारे गुरुद्वारे का नींव पत्थर रखो। जब महापुरुष गए नींव पत्थर रखने के लिए, जब वहां पहुंचे अरदास करके ईंट रख दी। अब मिस्त्री था थोड़ा अनजान, उसको ये बात का नहीं पता था कि जब भी बंदगी करने वाला नाम जपने वाला जैसे भी ईंट रख दे उसके ऊपर या तो सीमेंट डाल दे, बाकी कार्रवाई दूसरी जगह से थोड़ी खट के शुरू कर दे, उसको नहीं खिलाना चाहिए। उसको नहीं पता था। उसने क्या किया, जब बाबा जी ने ईंट रखी, एक सेकंड बाद ही उसने ईंट उठाई और अपने ढंग से फिर रख ली। हक सतनाम, बाबा जी कहते हो मिस्त्री, ओ मिस्त्री ये क्या किया तूने, एक सेकंड के लिए आया अंदर, इसने ये क्या कर दिया। तो अब मर्जी के साथ मर्जी मिलानी देखना। कहते ओ मिस्त्री ये क्या किया तूने, ईंट खिला दी। तो एक दो सेकंड के बाद कहते ओ हो मिस्त्री तेरा कसूर कोई नहीं, ऐसे लगता है हमारी रखी हुई ईंट गुरु नानक को अच्छी ही नहीं लगी। आखो सतनाम, हमारी रखी हुई ईंट गुरु नानक को अच्छी ही नहीं लगी। अच्छा मिस्त्री, आज रखी है, आज के बाद रखनी ही नहीं। अब गुरुद्वारा तो यहाँ बन जाएगा मगर यहाँ पे कोई ग्रंथ ही नहीं टिकेगा। आखो सतनाम, आज भी वो वचन अटल, उस गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा तो बन गया मगर कोई ग्रंथी हफ्ता रुकता है, कोई दो हफ्ते, कोई महीना, हद महीने डेढ़ महीने में अगला बदल नहीं पड़ता है। अख सतनाम ये मर्जी के साथ मर्जी मिलने, पहले एक सेकंड के लिए आया अंदर, ये क्या किया, फिर कहते हो तेरा कोई कसूर नहीं, ऐसे लगता है हमारी रखी ईंट गुरु नानक को अच्छी ही नहीं लगी। ये पहली तरह का शरण में आना है प्यारे हो, जितने भी बैठे हो अपनी मर्जी को छोड़ो और गुरु बाबे की मर्जी के साथ मर्जी मिलाओ, और जब गुरु की मर्जी के साथ मर्जी मिलाएगा तो सुखी हो जाएगा, सुखी। जब तक अपनी मर्जी करता है फिर दुखी रहता है प्यारे, और मिलाएं भी क्यों ना गुरु की मर्जी के साथ मर्जी, जिसने दिया ही सब कुछ है। मैं कहता हूं कोई आपको, किसी ने आपको कोई पैसे उधार देने हो ना, उधार मान लो आपने किसी से उधार लिए पैसे कि मुझे जरूरत है मुझे उधार दे, उसने उधार दिए वो भी आपके साथ बाद में रोब में बात करता है, अख सतनाम। और जिसने सब कुछ दिया और देख के तुम्हें कहता भी नहीं मैंने तुझे इतना कुछ दिया, फिर उसकी क्यों नहीं मानते हैं जी, जिसने सब कुछ दिया फिर उसकी क्यों नहीं मानते। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, कह रहे हो। ये पहली तरह का शरण में आना, हर कोई कहता है हर काम मेरी मर्जी से हो, अपनी मर्जी छोड़ो गुरु की मर्जी के साथ मर्जी मिलाओ, फिर सुखों को ढूंढने की जरूरत नहीं, सुख तेरे पीछे पीछे आएंगे। आखो सतनाम। आगे चलते हैं जी, सतगुरु चलाए। एक बार सारी संगत अब बोलना, कोई रसना खाली ना रहे, सारी संगत कहो प्यार से, जो सुख को चाहे सदा,
जो सुख को चाहे सदा,
ओ शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा। एक बंदा ना किसी महात्मा के पास गया, जी महात्मा जी मैं दुखी बहुत हूं, मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, कोई ऐसी कृपा करो। अब हर एक का समझाने का ढंग अपना अपना है, आखो सतनाम। महापुरुषों ने समझाना था इसको, कहते भाई क्या कहता है, कहता है जी मुझे सुख चाहिए, मैं दुखी बहुत हूं, बहुत दुखी, कोई ऐसी कृपा करो। कहते बड़ी आसान बात है, अगर तू चाहता है हमेशा तुझे सुख मिल जाए, बड़ी आसान बात है। कहते है जी जल्दी बताओ क्या, महापुरुष कहते ऐसा कर, जो भी तुम्हें इस संसार में सुखी नजर आता है उसके पांव की एक चप्पल लाके हमें दे दे और तुझे भी सुख मिलेगा। हक सतनाम। यह समझाने का ढंग था जी, सत बचन। अब निकल पड़ा जी सुखी बंदे को ढूंढने के लिए, चलता जा रहा, चलते चलते एक दुकान के ऊपर नजर गई, क्या देखता, बहुत बड़ी आलीशान दुकान, एसी भी लगे सब कुछ, बड़ी कृपा, 15-20 नौकर भी बैठे, सेठ जी बैठे, सफेद चादर बिछी, बड़ी कृपा। अपने मन में सोचता है लगता इससे सुखी कोई नहीं, आखो सतनाम है, क्यों ना हो इसके पांव की एक चप्पल लेके जाएं और महापुरुषों को देके चप्पल बदले में सुख ले लें, ये तो सस्ता सौदा है। जब सेठ जी के पास गया, सेठ को जाके कहता है सेठ जी मुझे आपके पांव की चप्पल चाहिए, सेठ कहता है भाई तू एक चप्पल मांग रहा है, या तो दो मांगता, मैं सोचता कि तुझे जरूरत है नहीं तेरे पास मैं दे देता, मगर एक चप्पल मांगता है, कोई ना कोई कारण है। कहता हाँ कारण तो है भाई, क्या कारण, कहते ऐसे मैं महापुरुषों के पास गया था सुख लेने के लिए, उन्होंने कहा किसी सुखी बंदे के पांव की एक चप्पल ला के हमें दे, तुझे भी सुख मिलेगा। तो सेठ जी आपके पास इतनी सहूलतें, इतने सुख, इतने नौकर चाकर, मुझे लगता है आप जैसा सुखी कोई नहीं। आप ऐसे करो अपने एक पांव की चप्पल दो, बदले में मुझे भी सुख। तो सेठ कहता है ओ भोलिया, अगर चप्पल लेके जानी चप्पल बेशक ले जा, मगर ये बात जो तू कह रहा है ना, मेरे से अधिक तुझे सुखी कोई नजर नहीं आता। वो कहीं मेरी जगह पे बैठ के देख, मुझे अपने से दुखी कोई नहीं दिखता। हक सतनाम। कहता है आपको कौन सा दुख, इतनी आपके ऊपर माया की भी कृपा, इतनी बख्शिश, इतने नौकर चाकर, इतनी आलीशान दुकान आपकी, सब कुछ तो है आपके पास, आप कहते फिर दुखी। कहते हाँ मेरी जगह पे बैठ के देख, मुझे तो मेरे से दुखी कोई नजर नहीं आता। कहते वो कैसे? कहते है नौ तरह की बीमारियां मुझे लगी हैं। आखो सतनाम। ब्लड प्रेशर की बीमारी, मुझे शुगर भी, घुटनों में भी दर्द रहता है। कहता है इत्यादक नौ तरह की बीमारियां मुझे लगी। तू कहता है मैं सुखी, मुझे तो मेरे से दुखी कोई नजर नहीं आता। कहता चलो खैर छोड़ो, आगे चलते हैं, कोई और ढूंढते हैं सुखी। अब जा रहा, अब जाते जाते सड़क के ऊपर नजर पड़ गई एक लीडर के ऊपर। आखो सतनाम। लाल गाड़ी वल सफेद गाड़ी, ऊपर लाल रंग की लाइट घूम रही, आगे पीछे कितने बॉडीगार्ड हैं जी। कहता हो इसकी कलम भी चलती, लोग इसकी बातें भी मानते हैं, कितना सुख, कितने बॉडीगार्ड भी, इतनी आलीशान गाड़ियां, बंगले, कितना कुछ इसके पास, लगता है इससे सुखी कोई नहीं। अब उससे डेट फिक्स करके टाइम ले लिया लीडर से, जी मैं मिलना चाहता हूँ बहुत जरूरी, सिफारिशें सपूरशें डाल ली हैं जी। जब मिलने के लिए गया तो लीडर साहब कहते बताओ भाई क्या काम है। कहता है काम कोई खास नहीं, मुझे आपके एक पांव की चप्पल चाहिए। हक सतनाम। कहता है चप्पल क्यों? कहता है ऐसे मैं महापुरुषों के पास गया, उन्होंने कहा किसी सुखी बंदे के पांव की चप्पल लेके आ, तुम्हें भी सुख, तो मुझे आपसे सुखी और कोई नजर नहीं आता। इतनी आपके ऊपर कृपा, आपकी कलम भी चलती, जो कहते दुनिया वाले मानते भी, इतनी गाड़ियां, इतने बॉडी गार्ड, इतनी माया, इतने सुंदर सुंदर बंगले, आपसे सुखी मुझे और कोई नजर नहीं आता। तो वो लीडर भी कहता है चाहे मेरी चप्पल ले जा, मगर ये जो तू कहता है ना मैं सुखी हूं, मुझे तो मेरे से दुखी और कोई नजर नहीं आता। कहता है आपको कौन सा दुख? कहता है दूसरी ऑपोजिट पार्टी वालों ने मेरे ऊपर 5 केस किए हैं। आखो सतनाम। 5 केस किए। कहता है 3 केस तो बिल्कुल अनजान पुणे में, जिसमें मेरा कोई कसूर है ही नहीं, वो किए, और 2 केस ऐसे भी हैं जिसमें मेरी गलती है। हक सतनाम। अब मैं तो दिने रात केसों की तरीक, कभी अदालत में जाता हूं, कभी कुछ करने के लिए। तू कहता है मैं सुखी, मुझे तुम दुखी, मेरे से कोई नजर नहीं आता। कहता अभी भी समझा नहीं कि महापुरुषों ने समझाना क्या था। कहता है चलो खैर इसको भी छोड़ो, अब किसी और सुखी को ढूंढते। अब ढूंढते ढूंढते प्यारे हो थक हार के ना एक बाग में पहुंच गया। वहां पे क्या देखा, एक बंदा बिल्कुल निश्चिंत होके बाग में आराम कर रहा, चप्पलें साइड पे उतरी। कहता है ओहो हो इतनी दुनिया जल बल रही, इतनी दुखी, ये इतना निश्चिंत होके पड़ा, खैर उस भगवान की किसी लीला में गड़ौंद है, लगता है इससे सुखी कोई नहीं। अब इसको उठाते नहीं, अगर उठ गया तो शायद चप्पल दे के ना दे। कहता है वैसे उठा लेते हैं। आखो सतनाम। अब जब चप्पल उठाने लगा ना उसको सुखी समझ के, तो उसकी जाग खुल गई। कहता है भाई कौन है तू, मेरी चप्पल क्यों ले जा रहा? कहता है ऐसे मुझे महापुरुषों ने भेजा चप्पल लेने के लिए किसी सुखी बंदे की, अभी अपनी बात पूरी कर रहा था तो क्या देखता, ये तो वही महापुरुष हैं जिन्होंने मुझे चप्पल लेने के लिए भेजा था। खो सतनाम। महापुरुष कहते मैंने तुझे चप्पल लेने के लिए भेजा और तू मेरी चप्पल उठा के लेके जा रहा है, तुझे और कोई सुखी नहीं मिला? तो हाथ जुड़ गए। कहता है महापुरुषों मैं बड़ी जगहों पे गया, मगर मुझे और कोई सुखी बंदा नहीं मिला इस धरती पे। हर कोई दुखी ही नजर आया। महापुरुषों बताओ सुख है कहाँ? तो महापुरुष कहते अब बैठ जा सतनाम, ये तो केवल तुझे समझाने का ढंग अपनाया था, अब बैठ। और सुख तेरी सियानब में नहीं, इस दुनिया के लोगों में तुम्हें सुख नहीं मिलेंगे। अगर चाहता है सुख लेना तो उस निरंकार की शरण में आ जा सतनाम। कहता शरण में आना किसे कहते? शरण में आना क्या होता है? ये पहली तरह के शरण में आना महापुरुष कहते हैं, शरण में आना अपनी मर्जी को छोड़ के उस निरंकार की मर्जी के साथ मर्जी मिला, दुख में रहता हुआ भी सुखी हो जाएगा। कहता मैं समझा नहीं। कहता पहले तूने अभी बताया सेठ के पास गया था ना, है जी, जिसको बीमारियां थी कई, उसके पास गया। कहता है वो भी सुखी हो सकता है दुखों में रहते हुए भी। कहता जी वो कैसे? कहता है जिस सेठ को बीमारी, मान लो शुगर की बीमारी है उसको, और अब कोई फीकी चीज खाने लगता है, फीकी चीज खाने से पहले पांच बारी एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच तक पहली पौड़ी पढ़ के उस नाम के रस को लेके उस चीज को खाए और अपने मन में ये बात रखे, पता नहीं कितनी चीजों के खाने के लिए मेरा मन तरसता रहना था। ये निरंकार ने जो शुगर की बीमारियां दी, ये शुगर की बीमारी जो मुझे दी, ऐसे लगता है निरंकार चाहता है मुझे उस क्लास में दाखिल करना जिस क्लास में थोड़ा खाना लिखा है। आखो सतनाम, क्योंकि गुरसिख जो है ना वो कम खाता है, कम सोता है और कम बोलता है। प्यारे अब सेठ भी सुखी हो सकता है अगर उसकी निरंकार की मर्जी के साथ मर्जी मिला दे। पता नहीं कितनी चीजों के खाने के लिए मेरा मन तरसता रहना था, मगर ये जो शुगर की बीमारी दी निरंकार मुझे, वो कम खाने वाली अवस्था में भेजना चाहता क्या? अब है तो बेशक दुख, मगर दुख में रहता बंदा भी सुखी हो जाएगा जब ये पहचान ले। कहते दूसरी बात तूने लीडर की ना, पांच केस हुए, तीन केसों में तो उसका कसूर नहीं, दो में कसूर है। कहते वो भी सुखी हो सकता है। कैसे? जिन केसों में उसका कसूर नहीं उसके लिए भी अपील करे, पूरे हाथ पांव मारे, जिसमें कसूर उसके लिए भी करे कुछ ना कुछ उपाय, मगर जिसमें कसूर है उन केसों को लेके अपने मन में दूसरी पार्टी के प्रति कोई ईर्ष्या ना रखे, ये बात अपने मन में बिठा ले। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे प्यारे हो कि जो आपको आपकी गलती बताए वो आपका असली मित्र है। आखो सतनाम, नहीं तो चापलूसी तो सारे करते हैं। हैं जी, जो कोई प्यार के साथ आपको अकेले में तेरा चानना करवा जाए वो तेरा असली मित्र। तो महापुरुष कहते जिन केसों में उसका कसूर है उसके लिए भी हाथ पांव मारे, मगर ये बात रखे अपने मन में उसके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, ये बात रखे कि ये जो केस मेरे ऊपर हुए हैं जिसमें मेरी गलतियां हैं, शायद निरंकार ये दूसरी पार्टी के जरिए ही ये विद बना रहा हो कि ये गलती मैं दोबारा ना करूं। आखो सतनाम, मेरे अवगुण को छुड़ाने के लिए ये केस मेरे ऊपर हुए। कहते बेशक पांच केस हैं मगर उसमें रहता हुआ भी बंदा सुखी हो जाएगा। सुखी कुंडी पकड़ना, ये गुरबाणी की पंक्ति है, सतगुरु खोए दयाल ता दुख ना जानिए। दुख है मगर ना जानिए, कभी जब हमें जांच आ गई उसकी मर्जी के साथ मर्जी मिलाने की। प्यारे दुनिया के बंदों के पास तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा गुरु की शरण आने में। नहीं तो दुनिया में पता क्या हालत है, एक बारी पढ़ोगे सारे, कोई भी रसना खाली ना रहे। ये दुनिया के बंदों की हालत है। आगे दास बोले दूसरी बारी गुरमुख, तीसरी बारी सारियां बीबियां पैणा बोले जी, जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी। जपो जो दिसे रोग रहत मेरा सत गुर जोगी रोग रहत मेरा
सत गुर जोगी
रोग रोग रहत मेरा सत गुर जोगी जो जो दिसे सो रोगी 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 जपो जो जो दिसे रोग रहत मेरा सत गुर जोगी होमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस लीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जेवा रोग मीन ग्रसियानो बासन रोग पवर बिन सानो हेत रोग का सगल संसारा त्रिपिद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी प्रमे रोग बंद रतन रती ना पावे बिन सतगुरु रोग कते ना जावे अब रोग जाए कैसे ध्यान देना सारे पार ब्रह्म जिसकी नी माया पार ब्रह्म जिसकी नी दया पार ब्रह्म जिसकी नी दया बाप कड़ रोगों कट लया ये कैसे जाए टूटे बंधन साध संग पाया टूटे बंधन साध संग पाया जब संगत में आएगा सारे बंधन टूट जाएंगे आखो सतनाम टूटे बंधन साध संग पाया कौ नानक गुर रोग मिटाया गुरमुखो जो जो जब बीबीओ जो जो रोग रहत मेरा सत गुर जोगी जपो रोग रहत जो जो दिसे सो रोगी जो जो दिसे सो रोगी जो जो
दिसे सो रोगी जो जो दिसे सो रोगी
सैसन दान दे इंद्र रोया परशुराम रोवे कर आया अजय सरोवे पीखियां खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे राम निकाला पया और सीता लक्ष्मण विछड़ गया रोवे दैसे मलंक गवाए जिन सीता आंधी डौरू बाए ये मैं ना एक दिन जब ये शब्द पढ़ रहा था ना इस शब्द में व्यंत अवतारों का जिक्र किया क्या जिनको समय समय पे रोना पड़ा खो सतनाम ये जिक्र पढ़ते पढ़ते मुझे अपने पिता गुरु नानक के ऊपर मान आ गया मैंने कहा मेरे साईं हर अवतार को अपने समय समय पे रोना पड़ा मगर एक मेरा गुरु नानक है जो कभी रोया नहीं दुख के कारण आखो सतनाम। गुरु नानक नहीं रोया, उसके बैराग में आंखों में आंसू आने वो बात अलग है, मगर किसी दुख के लिए रोए हो कभी नहीं। अगर पंजवें जामे में तत्ती तवी के ऊपर बैठे, तत्ती रेत सिर के ऊपर पड़ रही, तो वहां पे बैठ के भी रोए नहीं मेरे गुरु अर्जन देव पाछिया। वहां बैठे क्या कहते तेरा किया
के।
हर नाम पदार्थ आनंद मांगे। अगर नौवें जामे में चांदनी चौक में शीश अलग हो रहा है धड़ के साथ, वहां पे भी मेरा सैब रुआ नहीं आखो सतनाम। अगर दसवें जामे में ऐसी हालत कलगी तरपिता की, पहले एक समय वो जब सिर के ऊपर चौर सैब हो रही चंदवा लगा और मारा सिंहासन पे बैठे बेंत संगत दीदार करने वाली माया के भी ढेर लगे, अगर वो समय भी आ गया हिमाची वाड़े दे जंगलां दे विच टीम दा सराणा बनाया प्यारे ओ, उस समय भी मेरा कलगी तर रोया नहीं। उस समय पता क्या कहते सारे बोलना जी, मित्र प्यारे नो मित्र सभी बोलो। एक गुरु नानक ही है जो कभी रोया नहीं, बाकी सब रोवे राम निकल ना पाया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दैसर लंक गवाए, जन सीता आंधी डोरू आए रोवे जन्मे जागोए गया, एक ही कारण पापी पाया। और इस शब्द में ना अखीर पे फैसला दे दिया, बाली रोवे नाए पतारे नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, जो जो दिस सो सो रोगी, जो जो दिस सो सो रोगी, अरे ओ, दुनिया के बंदों के पास सुख नहीं मिलेगा, सुख उसकी शरण में आने से। और पहली तरह का शरण में आना, अपनी मर्जी को छोड़ के उसकी मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला, तो फिर दुख में रहता भी सुखी हो जाएगा तो सतनाम। अब दूसरी तरह का शरण में आना, वो क्या कि जितना भी जप तप बंदगी करता है, सब कुछ करने के बाद अपने अंदर निमाणा और निताना बन रखना, उसका शुक्राना ही करना हक सतनाम। मान लो कोई आप में से बीबी बैठी हो, चार बजे रोज सुबह उठती हो, आपके पड़ोस वाली बीबी सात बजे उठती हो, उसके उसको देख के आपके मन में अहंकार आ जाए, देखा मैं चार उठती हूँ वो सात उठती, बात कुछ और है। जब सात वाली को देख तेरे मन में शुक्राना आए, हे गुरु नानक तेरा शुक्राना है, मुझे इस कलयुग में भी चार बजे का अमृत वेला दिया है आखो सतनाम। ये दूसरी तरह का शरण में आना है कि जो भी जप तप बंदगी करते खो, सब कुछ करके उसका शुक्राना करना, गुरु कृपा करे। ये दो तरह का शरण में आना, इसकी मैं गहराई में अब नहीं जाऊंगा ज्यादा, कीर्तन की समाप्ति कर रहे हैं, ये अंतिम पंक्तियां पढ़ के आज रात को भी सत्संग है वहाँ पे भी दर्शन देना, पूरी डिटेल मुझे दे दो आप कोई जिसके पास इश्तिहार पड़ा है। गुरु कृपा करे बख्शिश करे मेरा दाता, ये पंक्तियां पढ़ लो एक बारी, उसके बाद जो अगले सत्संग के कार्यक्रम हैं आपको बताए जाएंगे। कोई भी रसना खाली ना रहे, अगर सुख चाहते हो तो सुख उसकी शरण आने में है। मेरे धन गुरु तेग बहादुर जी कह रहे क्या सारे पढ़ो, तो जो सुख को चाहे सदा,
जो सुख को चाहे सदा,
क्या कर ओ शरण राम की ले,
शरण राम की ले,
बोलो
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
सबकी आवाज नहीं आ रही। करो कीर्तन सारे
आए गुरु 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 आए
ओ शरण राम की ले सदा।